डॉक्टर डेविड एडिसिल्वा, इब्रानियों 17:5, इब्रानियों 4:14 से 5:10 एक महान उच्च पुजारी। 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। इब्रानियों को उपदेश के अगले मुख्य भाग इब्रानियों 4:14-5:10 में लेखक ने आखिरकार पुरोहिताई के विषय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और यीशु को हमारे महान महायाजक के रूप में सोचना शुरू कर दिया, एक विषय जिसकी घोषणा उसने अध्याय 2:70 में की थी। जैसे ही यह भाग शुरू होता है, लेखक आगे की सामग्री से निष्कर्ष निकालता है। इब्रानियों 4:14-16 पिछले भाग के अंत से काफी अलग है। इब्रानियों 4:12-13 ने भय की भावना को प्रभावी रूप से अपील की थी, जिससे श्रोताओं को डर लगा कि अगर वे यीशु के साथ विश्वासघात करते हैं तो वे परमेश्वर का सामना कैसे कर सकते हैं। 4:14-16 इसके विपरीत उस आत्मविश्वास की बात करता है जिसके साथ श्रोता परमेश्वर के पास आ सकते हैं और मदद मांग सकते हैं जब तक कि वे यीशु के साथ जुड़े रहें। यह न केवल तुलना के आधार पर बल्कि इब्रानियों 2:16-3:1 में हमारे सामने आई सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जहां यीशु को एक सहानुभूतिपूर्ण और वफादार महायाजक के रूप में रखने का विचार पहली बार पेश किया गया था। 5:01-10 में हम पाते हैं कि लेखक यीशु को महायाजक के रूप में मानने के विचार को गंभीरता से तलाशना शुरू कर देता है। हम उसे 3 बुनियादी कदमों में ऐसा करते हुए पाएंगे। सबसे पहले हम अध्याय 5:01-3 में सामान्य रूप से याजकों के कार्य को देखते हैं। फिर आयत 4-6 में हम इस पद पर यीशु की नियुक्ति के बारे में सोचते हैं और हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि यीशु को महायाजक के रूप में बोलने में हमारी सही बात है। अंत में श्लोक 7-10 में यीशु महायाजक का पद भरने की तैयारी करता है। उपदेशक तब सीधे अध्याय 5:10 से अध्याय 7 की शुरुआत में जा सकता था, लेकिन वह इसे रणनीतिक रूप से विराम देना और श्रोताओं को 5:11-6:20 में अधिक सीधे और स्पष्ट रूप से चुनौती देना पसंद करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उस पर खरे उतर रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले ही उनमें निवेश किया है। इस प्रकार इस प्रस्तुति का ध्यान केंद्रित करने वाले खंड के बाद लेखक एक कदम पीछे हट जाएगा, जैसा कि यह था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रोता ध्यान दे रहे हैं और अपने वर्तमान क्षण में जो जोखिम में है उसके दाव को और भी अधिक पूरी तरह से समझ रहे हैं। इब्रानियों 4:14-16 में लेखक ने अपने उपदेश के लिए कई तरह से मुख्य अपील प्रस्तुत की है। चूंकि हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, तो आइए हम अपने स्वीकारोक्ति को थामे रहें। क्योंकि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति न रख सके, बल्कि वह है जो हर तरह से हमारी तरह परखा गया है, हालांकि उसने पाप नहीं किया है। इसलिए आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट निर्भीकता से चलें, ताकि हम दया प्राप्त करें और समय पर सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। इन 3 आयतों की विषय वस्तु का महत्व उपदेशक द्वारा अध्याय 10:19-23 में इसी विषय वस्तु पर लौटने से पता चलता है, जो कि लेखक द्वारा स्वयं अपने लंबे और कठिन से समझाने वाले प्रवचन के दूसरी तरफ है, जो कि यीशु के पुरोहिती मंत्रालय और बलिदान के बारे में है। 4:14-16 और 10:19-23 की तुलना एक साथ करने पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक महान महायाजक होने के लाभ के बारे में बात करके शुरू करते हैं। दोनों में श्रोताओं को अपने स्वीकारोक्ति पर अडिग रहने का उपदेश शामिल है, और दोनों में यह उपदेश है, इसलिए आइए हम निकट आएं। ये मूलभूत आश्वासन और उपदेश पूरे केंद्रीय भाग को रेखांकित करते हैं, जिसका अध्ययन हम अगले कई प्रस्तुतियों में करेंगे। यह देखते हुए कि श्रोताओं ने यीशु के साथ खुद को जोड़ने और उनके वचन के इर्द गिर्द इकट्ठा होने वाले आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या खोया होगा, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लेखक इस बात पर जोर देता है कि इस संरेखण के परिणाम स्वरूप धर्मांतरित लोगों ने क्या हासिल किया है। चूंकि हमारे पास एक महान उच्च पुजारी है जो स्वर्ग से पार हो चुका है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, तो हमें अपनी स्वीकारोक्ति को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि हम उपदेश के बाकी हिस्सों को पढ़ते हैं, हम पाएंगे कि लेखक विभिन्न बिंदुओं पर इस बात पर जोर देता है कि संबोधित करने वालों के पास क्या है, न कि उन्होंने क्या खोया है। इस आशा में उनकी आत्माओं के लिए एक लंगर है जो पर्दे के भीतरी भाग में प्रवेश करता है, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत के रूप में प्रवेश किया। उनके पास स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है। उनके पास उस शाश्वत क्षेत्र में बेहतर और स्थायी संपत्ति है जहां परमेश्वर निवास करता है। उनके पास एक वेदी है जिस पर से तंबू में सेवा करने वालों को खाने का कोई अधिकार नहीं है। यहां अध्याय 4 श्लोक 14 में लेखक श्रोताओं को उनके महान विशेषाधिकार की याद दिलाता है। उनके पास उनके महायाजक और परमेश्वर के अनुग्रह के मध्यस्थ परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं। न केवल एक मानव पुजारी, न ही केवल एक देवदूत, बल्कि परमेश्वर का पुत्र। यहां पुत्र होने का यह विषय श्रोताओं को अनुग्रह के दिव्य स्रोत के प्रति यीशु की निकटता की याद दिलाता है। यह केवल पुत्र के रूप में ब्रह्मांड में यीशु की स्थिति का प्रतीक नहीं है। यह यीशु के मित्रों और अनुयायियों के लिए जो कुछ उन्हें दृढ़ता से जीने के लिए चाहिए, उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए ईश्वर के साथ यीशु की रणनीतिक नियुक्ति का एक चिन्ह है। यीशु के स्वर्ग से पार जाने के बारे में बात करना हमें उपदेशक के ब्रह्मांड विज्ञान में एक खिड़की देता है। लेखक दृश्यमान स्वर्ग को, जिसका वह हमेशा बहुवचन में उल्लेख करता है, इस भौतिक दृश्यमान सृष्टि का हिस्सा मानता है। अपने स्वर्गारोहण में यीशु को भौतिक सृष्टि से परे दृश्यमान आकाश सहित स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ा, जो शाश्वत क्षेत्र है। लेखक के लिए भौतिक सृष्टि से संबंधित दृश्यमान क्षेत्र से संबंधित हर चीज अस्थायी है और असफल होने के लिए नियत है। लेकिन जहां यीशु गया है, दृश्यमान स्वर्ग के दूर की ओर, वही स्थायी वास्तविकता है। यहीं पर श्रोताओं के जीवन में निवेश करने की आवश्यकता है, और इसलिए वह उनसे आग्रह करता है, आइए हम स्वीकारोक्ति को थामे रहें। यह धर्मोपदेश का एक प्रमुख लक्ष्य है, श्रोताओं को उनकी जरूरत की मानसिकता और एक दूसरे के बीच संबंधपरक शक्ति से लैस करना, जिसकी उन्हें अपनी आशा को एक साथ थामे रखने के लिए जरूरत है। यहां स्वीकारोक्ति शायद सिर्फ उन विश्वासों का समूह नहीं है जिन्हें वे ध्यान में रखते हैं, बल्कि यह एक कार्य, एक पेशा, उन अच्छी चीजों का एक बोला हुआ और जीवित साक्ष्य है जो उन्हें अपने मध्यस्थ यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर से प्राप्त हुई है। धर्मोपदेश के अंत में 13:15-16 में लेखक उनसे आग्रह करेगा कि यीशु मसीह के माध्यम से हम हमेशा ईश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम को स्वीकार करते हैं, बाहरी लोगों की प्रतिक्रिया के डर से अपने दिव्य उपकारकर्ता की गवाही देने से पीछे हटने के विपरीत। यहां स्वीकारोक्ति को बनाए रखना कम से कम आंशिक रूप से पारेसिया का कार्य है, साहस का कार्य है, अपने असमर्थ पड़ोसियों से यह कहना जारी रखना कि ईश्वर का संरक्षण, सूर्य का अनुग्रह, जो कुछ भी आप मुझे सहना चाहते हैं, उसे सहने के लायक है, क्योंकि आप उनके प्रति मेरी नई नई निष्ठा को अस्वीकार करते हैं। लेखक श्रोताओं को याद दिलाता है कि यह महायाजक वह है जो उनकी कमजोरियों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखता है, हर तरह से परखा गया है, जैसे कि उनका परीक्षण किया गया था। केवल एक अंतर यह है कि यीशु उन परीक्षणों से समझौता किए बिना पाप के गुजरे। इसलिए सूर्य में श्रोताओं को अपने और परमेश्वर के बीच एक अलौकिक मध्यस्थ के सभी लाभ मिलते हैं। जिसने पाप करके खुद को परमेश्वर से अलग नहीं किया है, जबकि एक मानव मध्यस्थ होने के लाभों में से कोई भी नहीं खोया है। कई बेटों और बेटियों के मांस और खून में पूरी तरह से साझा करने के यीशु के अपने अनुभव के कारण उन्हें कई शिष्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का गहन ज्ञान और सहानुभूति है। इसलिए लेखक उनसे आग्रह कर सकता है, आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ चले ताकि हमें दया मिले और समय पर सहायता के लिए अनुग्रह प्राप्त हो। अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का यह उपदेश बहकने, दूर जाने और पीछे हटने के लिए एक उपयुक्त आवरण है जो कम से कम कुछ श्रोताओं के सामने वर्तमान चुनौती है। यीशु की मध्यस्थता के कारण श्रोताओं के पास वह सब कुछ उपलब्ध है जिसकी उन्हें दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर से आवश्यकता हो सकती है। फिर वे कैसे कम पड़ने के बारे में सोच सकते हैं जब उनके पास अपनी यात्रा के लिए ऐसे संसाधन हैं? इसलिए इस खंड में लेखक मदद की आसन्न उपलब्धता के आधार पर श्रोता के आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश कर रहा है। इब्रानियों 4:12-13 और इब्रानियों 4:14-16 के बीच तुलना करने पर हम इस पूरे उपदेश में उपदेशक की आवर्ती बयानबाजी की रणनीति को देखते हैं। भय की अपील को आत्मविश्वास की अपील के साथ जोड़ा गया है ताकि इस रणनीति के दोहराव के माध्यम से लेखक श्रोता को भय के साथ विचलन को जोड़ने और आत्मविश्वास के साथ दृढ़ रहने में सक्षम बनाता है। उन्होंने श्रोता की स्थिति के लिए संदर्भ का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करना भी जारी रखा है। ईसाई आंदोलन में शामिल होने से धर्मांतरित लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने शहरों के हाशिए पर चले गए होंगे, लेकिन इसने उन्हें ब्रह्मांड के केंद्र, अनुग्रह के सिंहासन, ईश्वर के सिंहासन के करीब भी पहुँचाया है। चीजों के इस दृष्टिकोण को अपनाना, अपने पड़ोसियों और समाज की गोद में लौटना मतलब ईश्वर से और दूर जाना, ब्रह्मांड के केंद्र से और दूर जाना और जहां तक ईश्वर का सवाल है, हाशिए पर चले जाना। अध्याय 5:1-10 में इब्रानियों के उपदेशक ने पुजारी के लेंस के तहत यीशु की भूमिका और उपलब्धियों पर विस्तार से बताना शुरू किया। वह पहले श्लोक में पुजारी की भूमिका और गुणों की परिभाषा प्रदान करके शुरू करता है जो पेंटाटेच से ज्ञात पुजारी के कार्य और पद के सामान्य संदर्भ पर आधारित है। और इसलिए वह लिखता है, क्योंकि मनुष्यों में से प्राप्त होने वाला प्रत्येक महायाजक मनुष्यों की ओर से परमेश्वर की बातों के संबंध में स्थापित किया जाता है ताकि वह पापों के लिए उपहार और बलिदान चढ़ा सके। यह परिभाषा पुजारियों की भूमिका को दलालों के रूप में उजागर करती है जो मनुष्यों की ओर से मनुष्यों और ईश्वर के बीच खड़े होते हैं, ईश्वर के साथ बातचीत में शामिल होते हैं, जो उन मनुष्यों के लिए दिव्य लाभ सुरक्षित करते हैं जिनका पुजारी प्रतिनिधित्व करता है या जो ईश्वर मानव संबंधों में बाधाओं को दूर करते हैं क्योंकि मनुष्यों ने ईश्वर को अपमान किया है, अर्थात पाप। पुजारियों का एक गुण जिसे लेखक यहाँ विशेष रूप से उजागर करना चाहता है वह है उन लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति जिनकी ओर से वे मध्यस्थता करते हैं। और इसलिए वह निम्नलिखित छंदों में आगे बढ़ता है, महायाजक अज्ञानी और भटकने वालों के प्रति अपने जुनून को कम करने में सक्षम है क्योंकि वह स्वयं भी कमजोरी के अधीन है जिसके कारण वह लोगों की ओर से और खुद की ओर से पाप बलि चढ़ाने के लिए बाध्य है। मध्यस्थता की आवश्यकता वाले अन्य लोगों के प्रति सामान्य पुजारी की सहानुभूति का स्रोत उस पुजारी का पाप करने का स्वयं का दायित्व है। वह अपनी स्वयं की कमजोरी जानता है। वह जानता है कि वह स्वयं वाचा की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ है और इसलिए वह अपने भाइयों और बहनों के प्रति क्रोध या आक्रोश की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है जो समान रूप से कमजोरी के लिए उत्तरदायी हैं। अज्ञानी और भटकने या गलती करने वाले शब्दों के साथ उपदेशक उन पापों पर प्रकाश डालता है जो जानबूझकर नहीं किए जाते हैं बल्कि जो गलती से या अज्ञानता में किए जाते हैं। मूसा का कानून तोरा खुद जानबूझकर किए गए पापों के लिए प्रावधान नहीं करता है। तोरा में अभिव्यक्ति है कि पाप बड़े हाथ से किए जाते हैं, और इब्रानियों के लेखक इसे बाद में अपने उपदेश में अध्याय 10 श्लोक 26 में प्रसिद्ध चेतावनी वाले अंशों में से एक में लाएंगे। इस उपदेश के दौरान कई बार उपदेशक इस तथ्य को सामने लाता है कि लेवी के पुजारियों को अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए पहले बलिदान चढ़ाना पड़ता था, उसके बाद ही वे अपने जैसे अन्य पापियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा के लिए मध्यस्थता करने की स्थिति में खड़े हो सकते थे। लेविटिकस 16 में प्रायश्चित के दिन के अनुष्ठान में इस आवश्यकता को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो कि इब्रानियों के मुख्य प्रवचन के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाता है, जो कि यीशु के पुजारी और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से इब्रानियों के अध्याय 9 में। हारून से शुरू होने वाले महायाजकों को लोगों के पापों के लिए पहले बकरे का खून चढ़ाने से पहले महायाजक और उसके परिवार के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए पहले एक बैल का खून चढ़ाना पड़ता था। लेखक अध्याय 7 श्लोक 27 में इस विषय पर वापस आएगा। यह मानवीय पुजारियों में एक दोष है, लेकिन यीशु में यह दोष नहीं है। जैसा कि लेखक ने पहले ही जोर दिया है, यीशु यद्यपि हम जैसे हर मामले में परीक्षा में थे, फिर भी पाप से रहित रहे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को वह अपमान नहीं दिया जो उनके और परमेश्वर के बीच खड़ा होता और जिसे दूर करने की आवश्यकता थी, तभी वे दूसरों की ओर से एक प्रभावी मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते थे। लेखक अध्याय 5 श्लोक 4 से 6 में पुरोहिताई की नियुक्ति के बारे में बात करता है। वह लिखता है कि कोई भी व्यक्ति खुद से यह सम्मान नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है, जैसे हारून को भी बुलाया गया था। इस प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनकर खुद को महिमा नहीं दी, बल्कि जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है, उसे महिमा दी। जैसा कि वह दूसरी जगह कहता है, आप मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार हमेशा के लिए पुजारी हैं। ग्रीक और रोमन धर्मों और यहूदी पंथ प्रथा दोनों में पुजारियों को आम तौर पर चुना या नियुक्त किया जाता था, न कि वे अपनी पहल पर भूमिका ग्रहण करते थे। यह विशेष रूप से इसराइल में मामला था, जहां केवल लेवी जनजाति के सदस्य ही मंदिर में सेवा कर सकते थे, और उस जनजाति के भीतर केवल कुछ कबीले ही पुजारी के रूप में सेवा कर सकते थे। हारून को खुद परमेश्वर ने महायाजक के रूप में चुना था। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थानों और पवित्र चीजों तक उससे ज्यादा पहुंच लेता है जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसके कबीले और वंश के आधार पर दी है, तो उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, जैसा कि टोरा में विशेष नियमों में स्पष्ट किया गया है। इसलिए उपदेशक को यह दिखाना चाहिए कि यीशु को खुद भी पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हारून को किया गया था। इस बिंदु पर उपदेशक भजन 2 को जोड़ता है, जिसे वह यहाँ फिर से उद्धृत करता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है, भजन 110 पद 4 के साथ, जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से तुझसे संबोधित किया है, तू मलिकिसिदक की रीति के अनुसार सदाकाल के लिए याजक है। भजन 110 तथाकथित शाही भजनों में से एक था, जो यहूदा राज्य के राजाओं का जश्न मनाता था। यह विशेष भजन इसराइली राजा या यहूदा के राजा को दिए गए विशेष विशेषाधिकार को उजागर करता है, न केवल राजसी अधिकार रखने के लिए बल्कि कुछ पुजारी अधिकार रखने के लिए भी। भजन 110 के लेखक ने इस तरह की किसी चीज के लिए बाइबल की मिसाल के लिए मेल्कीसेदेक की कहानी को देखा, कुछ गैरलेवियों को भी कुछ पुजारी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो सकते हैं। भजन 110 अब तक ईसाई मंडलियों में यीशु से संबंधित एक मसीहाई पाठ के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। जबकि कई शुरुआती ईसाई भजन 110 की आयत 1 का उल्लेख करते हैं, मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के लिए एक पायदान न बना दूं, इब्रानियों के लेखक ने आयत 4 को पढ़ा है, तुम मेलकीसेदेक के आदेश के अनुसार हमेशा के लिए एक पुजारी हो, और वह वहां यीशु की पुजारी के रूप में दिव्य नियुक्ति के लिए आधिकारिक वारंट पाता है। आप हमेशा के लिए पुजारी हैं। जब यहूदा के राजा से बात की जाती थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। लेकिन अब प्रारंभिक चर्च के विश्वास के कारण कि यीशु को एक अविनाशी जीवन के लिए पुनर्जीवित किया गया था, इस भजन पाठ को कहीं अधिक शाब्दिक रूप से पढ़ा जा सकता है। यीशु का अनंत जीवन, जो अब हमेशा के लिए मृत्यु की शक्ति से परे है, उसे हमेशा के लिए पुजारी बने रहने की अनुमति देता है। लेखक जल्द ही मेलकीसेदेक के चरित्र और यीशु के पुजारी पद के लिए मेलकीसेदेक के महत्व पर अध्याय 7 श्लोक 1-10 में वापस आएगा। अभी के लिए उसने कम से कम भजन 110 में यीशु की परमेश्वर द्वारा नियुक्ति के लिए एक शास्त्रीय वारंट स्थापित किया है, न केवल मसीह की गरिमा के लिए मसीहा और मसीहाई राज्य पर राजा के रूप में, बल्कि पुजारी पद की गरिमा के लिए भी। अध्याय 5 श्लोक 1-6 में यीशु की महायाजक पद पर नियुक्ति के तथ्य को स्थापित करने के बाद लेखक श्लोक 7-10 में इस पद पर नियुक्ति के लिए मसीह की तैयारी के पहलुओं पर विचार करता है। श्लोक 7-10 वास्तव में पिछले श्लोकों में शुरू हुए वाक्य को जारी रखते हैं। यह उन स्थानों में से एक है जो हमें ग्रीक लिखने में लेखक की सहजता की झलक देता है, क्योंकि वह अधीनस्थ खंड के बाद अधीनस्थ खंड को घुमाता है। उनके लिए यह एक श्रेय है, आधुनिक यूनानी छात्रों के लिए यह एक दुःस्वप्न है। लेकिन इस भाग में वह कहते हैं, अनिवार्य रूप से मसीह ने अपने शरीर के दिनों में उस व्यक्ति से प्रार्थना और मध्यस्थता की जो उसे मृत्यु से बचाने में सक्षम था, बड़ी चीखों और आंसुओं के साथ उसकी धर्मप्रायणता के कारण उसकी सुनी गई, भले ही वह एक पुत्र था। उसने जो कुछ सहा, उससे उसने आज्ञाकारिता सीखी, और सिद्ध होने के बाद वह उन सभी के लिए अनंत उद्धार का स्रोत बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उसे मलिकिसिदक की रीति पर परमेश्वर द्वारा महायाजक नियुक्त किया गया था। जब कोई इस वाक्य को यूनानी में देखता है तो वह कई अंग्रेजी अनुवादों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इस वाक्य का जोर और वजन कहाँ पड़ता है। अंग्रेजी अनुवादों को अनिवार्य रूप से इस सामग्री को कई वाक्यों में तोड़ना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया। लेकिन इस वाक्य की असली रीढ़ यह तथ्य है कि मसीह ने उन चीजों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने झेली, और उन सभी के लिए शाश्वत उद्धार का स्रोत बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। बाकी सब कुछ उसी पर निर्भर है और एक तरह से उसी का आभूषण है। इस अंश के माध्यम से काम करते हुए हम सबसे पहले यीशु की नश्वर जीवन के दौरान उनकी गहरी और भावुक धर्मप्रायणता की इस छवि से शुरू करते हैं, जो उन्हें मृत्यु से बचाने में सक्षम थे और उनकी धर्मप्रायणता के कारण उनकी सुनी गई। गेटसेमेन में हुए प्रकरण के साथ इस छवि की पहचान करने की व्यापक प्रवृत्ति है, जिसे मार्क, मैथ्यू और ल्यूक के सुसमाचारों से भी जाना जाता है। वहां हम यीशु को गहरी भावनात्मक निवेश के साथ पीड़ा में प्रार्थना करते हुए पाते हैं, यहाँ तक कि पसीने की हद तक, जैसे कि खून की बड़ी बड़ी बूंदें हों। जबकि यह वास्तव में हमारे लेखक के दिमाग में हो सकता है, हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस पहचान में कुछ धारणाएं हैं जिनकी जांच करने की आवश्यकता है। यह मानता है सबसे पहले कि ईश्वर की पहचान जो मृत्यु से बचाने में सक्षम था, प्रार्थना की सामग्री को प्रकट करता है, ईश्वर मुझे मृत्यु से बचाओ। यह भी मानता है कि गेतसेमेन में यीशु की प्रार्थना को किसी तरह से सुना हुआ मानना स्वाभाविक होगा, इस तथ्य के बावजूद कि क्रूस पर चढ़ाया जाना वैसे भी हुआ था। और यह भी स्पष्ट रूप से मानता है कि हमारे लेखक पहले से ही इन विशेष सुसमाचार परंपराओं से परिचित थे। एक अन्य संसाधन जिसे कई हिब्रू विद्वान लेखक की सोच और भाषा के लिए संभावित स्रोत के रूप में देखते हैं, वह दूसरे मंदिर काल में धर्मप्रायण लोगों की प्रार्थनाओं के सामान्य चित्र और भाषा होंगे। बहुत से भजन बहुत पीड़ा और आंसुओं की जगह से बोले गए हैं। और जब हम दूसरे मैकाबीज और तीसरे मैकाबीज जैसे ग्रंथों में प्रार्थनाओं के विवरण पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि धर्मप्रायण लोग अक्सर विलाप और आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं या सर्वोच्च ईश्वर से रोते और आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। दूसरे मैकाबीज 11 में यहूदिया के लोग एंटियोकस 4 के तहत लिसियस की घेराबंदी का सामना कर रहे थे, विलाप और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तीसरे मैकाबीस में जब मंदिर को अपवित्र करने की धमकी दी गई, तो पुजारियों ने सर्वोच्च ईश्वर से रोते हुए और आंसू बहाते हुए प्रार्थना की। उसी पुस्तक में बाद में जब मिस्र के यहूदियों को उनके वध की प्रतीक्षा करने के लिए हिप्पोड्रोम में ले जाया गया, तो वे आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरी बार वे आंसू भरी याचिकाएं करते हुए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थनाएं और इन प्रार्थनाओं में जो भावनात्मक निवेश किया जाता है, वह इब्रानियों 5:07 से 8 में यीशु के चित्रण से बहुत मिलता जुलता है। इसलिए यह काफी हद तक संभव है कि उपदेशक ईसाई संस्कृति में ज्ञात गेतसेमेन परंपरा का विशिष्ट संदर्भ देने के बजाय धर्मप्रायण लोगों की उत्कट भावनात्मक प्रार्थनाओं की इन सांस्कृतिक प्रतिध्वनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। लेखक का लक्ष्य यीशु की धर्मप्रायणता को उच्च पुरोहिताई के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में प्रदर्शित करना है, जिसे परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना सुनकर और वास्तव में उसे उसके दुख के दूसरी ओर पुनरुत्थान के अर्थ में मृत्यु से बचाकर पुष्टि की। अपने शरीर के दिनों में यीशु प्रार्थना का लाभ उठाता है और इसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचता है। उस अनुभव में अपने विरोधियों द्वारा उस पर लाई गई सभी शत्रुता, दर्द और शर्म को सहने की क्षमता पाता है। वास्तव में यीशु यहाँ वही करने के लिए एक आदर्श प्रदान करता है जो लेखक श्रोताओं को अध्याय 4:14-16 में काफी हद तक हल्के उत्पीड़न की स्थिति में करने के लिए कहता है। वाक्यांश यद्यपि वह एक पुत्र था, इस वाक्य में कैसे फिट बैठता है, यह व्याख्या में कुछ बहस का विषय है। अंग्रेजी अनुवाद अक्सर इस वाक्यांश को उसके पहले की बजाय उसके बाद की बात से जोड़ते हैं। हालांकि वह एक बेटा था, लेकिन उसने उन चीजों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने झेली। हालांकि यह अध्याय 12:5-11 में लेखक द्वारा कही गई बातों के साथ महत्वपूर्ण तनाव में है, जहां बेटा या बेटी होना झेली गई या अनुभव की गई चीजों से आज्ञाकारिता सीखने के बिल्कुल विपरीत नहीं है। वास्तव में लेखक यह स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा कि ऐसा शिक्षाप्रद अनुशासन वास्तव में वही है जिसकी वास्तविक बेटों और बेटियों को अपेक्षा करनी चाहिए। अगर उनका मतलब यह था कि इस आयत को सुना जाना चाहिए, हालांकि एक बेटा होने के बावजूद उसने उन चीजों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने झेली, तो वह उसी बिंदु का खंडन कर रहा होगा जिसे वह कुछ अध्याय बाद में बताने की उम्मीद करता है। मेरा मानना है कि वाक्यांश वास्तव में पिछले दावे को योग्य बनाने के लिए बेहतर ढंग से समझा जाता है। उसे उसकी धर्मप्रायणता के कारण सुना गया, हालांकि वह एक बेटा था। लेखक यह कहना चाहता है कि यीशु और यीशु की प्रार्थनाओं के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया भाईभतीजावाद या पक्षपात का उदाहरण नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्ता के गुण और समर्पण को पहचानने का उदाहरण थी। इस तरह यीशु के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया उपदेशक के श्रोताओं के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया का एक उचित संकेत है, साथ ही वे परमेश्वर के प्रति समान धर्मनिष्ठता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। यीशु के पुत्र होने के कारण, दूसरे शब्दों में, जरूरत के समय में यीशु के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया के संदर्भ में यीशु को श्रोताओं पर कोई लाभ नहीं मिला। मेरे सुझाव के समर्थन में एक अंतिम अंश यह तथ्य होगा कि शब्द हालांकि ग्रीक में है, कैपर का उपयोग फिर से स्पष्ट रूप से किया गया है। दोनों इब्रानियों 7:05 और 12:17 में जो पहले आता है उसे परिभाषित करने के लिए, न कि उसके बाद आने वाली बातों को। जब लेखक लिखता है कि यीशु ने उन चीजों से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने झेली, तो वह एक सामान्य ग्रीक सांस्कृतिक कहावत और वाक्य विन्यास इमाथेन इपाथेन का हवाला दे रहा है। उसने सीखा, उसने दुख झेला। उदाहरण के लिए यह पैटर्न एशेलियस और सोफोक्लीस में पाया जाता है। इस संबंध में यीशु उन कई बेटों और बेटियों के लिए अग्रणी है जो कष्टों से या बल्कि कष्टों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और धर्मनिष्ठता और आज्ञाकारिता के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जो उनमें धार्मिकता का शांतिपूर्ण फल पैदा करेगा जो ईश्वर को प्रसन्न करेगा जो इन सभी अनुभवों के माध्यम से उन्हें आकार देता है। फिर से यह अध्याय 12 श्लोक 5 से 11 में विकसित किया जाएगा। जब लेखक इब्रानियों 5:09 में यीशु के पूर्ण होने की बात करता है तो वह यीशु के सभी दोषों या कमियों को दूर करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इब्रानियों में पूर्णता की भाषा किसी चीज या व्यक्ति को उसके लक्ष्य उसके टेलोस तक लाने को दर्शाती है। लक्ष्य टेलोस में वही मूल पूर्णता टेलोस अंतिम अवस्था में पाया जाता है। इस अंश में सिद्ध होना विशेष रूप से उसके शरीर के दिनों में होने के विपरीत है जिसमें उसने पीड़ा के माध्यम से सीखा। यीशु का स्वर्गारोहण और स्वर्गीय क्षेत्र में पार करना परमेश्वर के निवास का स्थान जहां से वह अनंत उद्धार का स्रोत बनने में सक्षम है उसका सिद्ध होना दर्शाता है। यह उसकी यात्रा की पूर्णता है, सीमांत अवस्था से गुजरने का यह संस्कार जो उसके अवतार में शुरू हुआ और उसके दुख और मृत्यु के माध्यम से जारी रहा जिसे अब पूर्णता तक लाया गया है, उसके स्वर्गारोहण और सत्र में पूर्णता तक परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उसका बैठना। यीशु अपने अनुयायियों के लाभ के लिए ऊंचे स्थान पर महिमा के दाहिने हाथ पर होने के इस विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं। लेखक यहाँ इस बात पर जोर देता है कि वह इस उच्च पद से उन सभी के लिए अनंत उद्धार का स्रोत है जो उसकी आज्ञा का पालन करना जारी रखते हैं। लेखक यहाँ श्रोताओं को इस मसीह इस महायाजक के प्रति निष्ठा की निरंतर आवश्यकता की याद दिला रहा है यदि उन्हें अभी उसके लाभों का अनुभव करना है और इस जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा के दूसरे छोर पर उसके द्वारा लाए जाने वाले अंतिम लाभों का अनुभव करना है। इसके बाद उन्होंने श्रोताओं को यह याद दिलाते हुए इसका समापन किया कि यीशु को परमेश्वर ने मलिकिसिदक की तरह उच्च पुजारी नियुक्त किया था। फिर से वह यहाँ से सीधे अध्याय 7 की शुरुआत में जा सकते थे, लेकिन उन्हें इस व्याख्या में विराम बटन दबाना महत्वपूर्ण लगता है ताकि एक ऐसा विषयांतर हो जो श्रोताओं को झकझोर दे और यह सुनिश्चित करे कि वे वास्तव में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, न केवल उपदेश के साथ बल्कि ईसाई जीवन के साथ भी। ब्रानियों 4:14-5:10 ने कई महत्वपूर्ण तरीकों से लेखक की बयानबाजी की रणनीति को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले 4:12-13 में डर की अपील के बाद लेखक ने 4:14-16 में आत्मविश्वास की अपील शुरू की है। श्रोताओं को वह सारी मदद मिलती है जिसकी उन्हें अपने धर्म परिवर्तन से शुरू की गई यात्रा के अंत तक पहुंचने के लिए कभी भी जरूरत हो सकती है। वे एक पूरी तरह से स्थापित और पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्ण मध्यस्थ का आनंद लेते हैं जो उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। इस संबंध में लेखक उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ता पूरी तरह से संभव है। जब वे दृढ़ता के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं तो वे हर कदम पर ईश्वर की मदद के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। इसी उपदेश ने लेखक की वैचारिक रणनीति को भी आगे बढ़ाया है क्योंकि वह उन्हें अनुग्रह के सिंहासन के करीब आने का आग्रह करता है। वह उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित कर रहा है कि जैसे जैसे वे एक साथ आते हैं जैसे जैसे वे ईश्वर के सामने आते रहते हैं वे ब्रह्मांड के केंद्र ईश्वर के सिंहासन के करीब पहुंच रहे हैं। इसके विपरीत परोक्ष रूप से जैसे जैसे वे दूर होते जाते हैं या खुद को एक साथ इकट्ठा करने से पीछे हटते हैं जहां ईश्वर उनके बीच में पाया जाता है, जैसे जैसे वे उस समाज में वापस आते हैं जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। वे ब्रह्मांड के दिव्य केंद्र से दूर होते जाएंगे, जैसे कि हाशिए की ओर। यह उस स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जहां ईसाई खुद को समाज के सामने पाते हैं, जहां उनके पड़ोसियों ने वास्तव में उन्हें अपने ही शहरों में सामाजिक और वैचारिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया है। लेकिन अपने समाज के हाशिए पर चले जाने से वे ब्रह्मांड के केंद्र, अनुग्रह के सिंहासन, ईश्वर के सिंहासन के और भी करीब आ गए हैं। 5.1.10 में लेखक यीशु के बारे में एक मध्यस्थ या उच्च पुजारी के रूप में अपने प्रवचन को बुनना शुरू करता है। यहाँ वह इस संबंध में यीशु के बुलावे की वैधता और उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार श्रोताओं को पवित्र शास्त्र के माध्यम से और प्रार्थना में पवित्र व्यक्ति की प्रस्तुतियों और ईश्वर द्वारा सुने जाने के माध्यम से आश्वस्त करता है कि यीशु उनके लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त मध्यस्थ है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी अलग थलग तरीके से इस पद को अपने ऊपर ले रहा है। वह वास्तव में परमेश्वर का अंतिम महायाजक है, जिसे परमेश्वर ने श्रोताओं की ओर से तथा सभी लोगों की ओर से इस भूमिका को निभाने के लिए चुना है। कष्टों के बीच यीशु की प्रतिबद्धता तथा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर महायाजक के रूप में स्थापित होने के मार्ग पर कष्टों से गुजरने की इच्छा की याद एक बार फिर कृतज्ञता जगाने तथा निष्ठा को प्रेरित करने का काम करेगी, क्योंकि यह श्रोताओं को फिर से याद दिलाता है कि उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए यीशु ने उनके लिए कितना कुछ सहा। साथ ही इस खंड का समापन कथन उन्हें पुत्र के प्रति निरंतर आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाता है। यदि श्रोता अनंत उद्धार, अनंत मुक्ति का आनंद लेने की आशा करते हैं जो पुत्र प्रदान करेगा, वह और कोई नहीं उन लोगों के लिए अनंत उद्धार का कारण बन गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह अंश हमारे परिवेश में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण शब्द बोलना जारी रखता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इब्रानियों 4:14-16 विश्वासियों को हर उम्र में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचना यीशु द्वारा खुद को देने से कई बेटों और बेटियों के लिए जीते गए प्राथमिक लाभों में से एक है। प्रार्थना केवल एक अनुष्ठान या कमजोरों का एकांतवास नहीं है, यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के परीक्षणों, परीक्षाओं और प्रलोभनों के बीच ईश्वर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें और विश्वासयोग्यता और आज्ञाकारिता में बने रह सकें। पुजारी की उन लोगों के प्रति सहानुभूति जिनकी ओर से वह मध्यस्थता करता है, चाहे वह लेवी के पुजारी हो या महायाजक के रूप में यीशु, हमें इस तथ्य की याद दिलाती है कि जो लोग मसीह के नाम पर सेवा करना जारी रखते हैं, उन्हें अज्ञानी और गलत काम करने वालों के प्रति सहानुभूति के इस आवश्यक गुण को अपनाना जारी रखना चाहिए। कठोर न्याय करने वाली आत्मा का उपाय हमारे लिए है, जैसा कि लेवी के याजकों के लिए था, अपनी खुद की कमजोरियों का स्मरण, पाप की शक्ति के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी, पाप से बचने और उसे प्रसन्न करने वाले काम करने के लिए परमेश्वर पर हमारी पूरी निर्भरता। इस तरह के चिंतन से एक कोमल आत्मा आती है जो जानती है कि पापी से कैसे प्यार करना है और उसकी मदद कैसे करनी है, जो महान महायाजक के प्यार और देखभाल को दर्शाता है जो हमेशा उन पापियों को अपने पास वापस बुलाता है। इस अंश में यीशु का उदाहरण हमारे लिए भी एक आदर्श बना हुआ है कि हम इस संसार में परमेश्वर की इच्छा और कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप कठिनाइयों या पीड़ाओं का सामना करें। यह उन्होंने साहसी प्रतिबद्धता के साथ किया, लेकिन साथ ही ईमानदार, बिना किसी रोकटोक के प्रार्थना में परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर भी रहे। यीशु ने जो अनुभव किया या जो कुछ सहा, वह उनके लिए आज्ञाकारिता सीखने और इस मूल मूल्य के साथ अपने परिचय और आधार को गहरा करने के अवसर बन गए। ऐसे अनुभव हमारे लिए भी ऐसा ही करने के अवसर बने रहते हैं। अब इसके साथ उपदेशक सभी प्रकार की पीड़ा या कठिनाई को पवित्र करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी भी कठिनाई को पवित्र करता है जो यीशु के साथ खुद को जोड़ने और किसी दिए गए परिस्थिति में भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इस तरह के प्रकरण जैसे कि कठिनाई या पीड़ा का सामना करना, आत्मा द्वारा प्रशिक्षित होने, ईश्वर को प्रसन्न करने वाले गुणों में आकार लेने और बनने के अवसर बन जाते हैं, और सबसे बढ़कर ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए पूरे दिल से प्रतिबद्धता का गुण। जहां कहीं भी मसीही ऐसे कष्टों को सहते हैं, उनके बुलावे और उनकी आशा का मूल्य उनकी आत्माओं में गहराई से समा जाता है। उनकी इच्छाओं का ईश्वर की ओर झुकाव मजबूत होता है। पीड़ा की आग का सामना करने में दृढ़ता के माध्यम से वे जीवन की प्राथमिकताओं की एक मजबूत समझ तक पहुंचते हैं और मसीह के साथ साझेदारी में ईश्वर की आज्ञाकारिता को उन प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखना सीखते हैं। इसी तरह उन जगहों पर न्याय के लिए आवाज उठाने वाली आवाजें जहां अन्याय स्वीकार्य मानदंड है, अनिवार्य रूप से पापियों की शत्रुता को अपने ऊपर बुलाती हैं। मानव समाज के लिए ईश्वर के दर्शन और इच्छा के प्रति अपनी गवाही को दबाने से उनका इनकार उन्हें यह एहसास कराता है कि ईश्वर और ईश्वर के राज्य के लिए जीने का क्या मतलब है, क्योंकि वे यीशु की तरह इस दुनिया के लिए ईश्वर के दर्शन के लिए आज्ञाकारी गवाही के लिए पापियों की शत्रुता को सहन करना जारी रखते हैं।